हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अंकुश शिवांशा को किडनैप करके जंगल में ले गया था। तेजेंद्र ने उसे शिवांशा को मारने के लिए कहा था, लेकिन अंकुश के इरादे कुछ और थे। हमेशा से ही उसकी नीयत शिवांशा को लेकर बुरी थी। जब वो छोटी थी और उनके घर आई थी, तब भी अंकुश को मौका मिलता, वो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। आज तो अंकुश को खुला मौका मिल गया था, जब वो शिवांशा के साथ कुछ भी कर सकता था। अंकुश शिवांशा के साथ जबरदस्ती कर रहा था। अचानक वहां पर एक गाड़ी आई, जिसे देखकर शिवांशा मदद के लिए उसकी ओर भागने लगी। उसमें से एक शख्स निकला, जिसका चेहरा देखे बिना ही शिवांशा जाकर उसके गले लग गई थी। शिवांशा बुरी तरह रो रही थी। उसने सुबकते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। इस वक्त शिवांशा जिसके गले लगी हुई थी, वो कोई और नहीं, वेद था, जो उसे मारने के लिए आ रहा था। वेद के बाद गाड़ी से प्रथम बाहर निकला, जो शिवांशा को वेद के इस तरह गले लगे हुए देखकर हैरान था। वेद अलग टाइप का इंसान था। वो अपने फैमिली मेंबर्स तक को जल्दी से हग नहीं करता था, और ना ही किसी को उसके इतने करीब आने की इजाज़त तक थी। लेकिन शिवांशा वो पहली लड़की होगी जो वेद के सीने से लगी हुई थी। उसकी इस हरकत पर वेद ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और एक झटके में उसे खुद से अलग कर दिया था। इस बीच अंकुश भी वहां पर पहुंच गया था। अपने सामने वेद को देखकर अंकुश बुरी तरह हड़बड़ा गया था। ऊपर से शिवांशा अभी भी उसके पास खड़ी हुई थी। अंकुश इस बात से अनजान था कि वेद शिवांशा के बारे में जान चुका है। वो शिवांशा की तरफ देखकर तेज आवाज में बोला, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी इधर आओ, वहां घर पर शादी के लिए सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेद का अचानक इस तरह जंगल में मिलना अंकुश को पूरी तरह इत्तेफाक लग रहा था। वहीं उसकी बातों से वेद समझ गया था कि शिवांशा ही देवराज ठाकुर की पोती है। वो भी शिवांशा को मारने के मकसद से आया था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला था कि वो इस वक्त उसके रक्षक के तौर पर वहां खड़ा था। वेद ने एक नज़र अंकुश को देखने के बाद शिवांशा की तरफ देखा। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसके हाथों पर खरोच के निशान थे और कपड़े और गहने अस्त व्यस्त हो रखे थे। वो रो रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। अंकुश के बुलाने के बाद भी शिवांशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो उसके पास बढ़ते हुए बोला, ये आजकल की लड़कियां भी ना बहुत अजीब होती हैं। वहां घर पर सब शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें घूमना होता है। अच्छा, लेकिन इसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि ये कहीं घूम कर आ रही है। वो तो काफी डरी हुई लग रही है और रो भी रही है, प्रथम ने उसे घूरते हुए कहा। अंकुश ने उसकी बात का जवाब देते हुए पूरे एटीट्यूड से कहा, और तुम्हें हमारे घर के मामलों में बीच में बोलने का हक किसने दिया? बीट इन योर लिमिट्स। कम शिवांशा, मनन वेट कर रहा होगा। अपनी बात खत्म करके अंकुश शिवांशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जा ही रहा था कि तभी बीच में वेद आ गया। वेद की इस हरकत पर अंकुश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, वेद सिंह चौहान, नाम का ही सही, लेकिन हमारे बीच एक रिश्ता है, उसकी मर्यादा को पार मत करो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा जब कोई हमारे घर की इज्जत के मामले में बीच में आएगा। ओह रियली? वेद ने भौहें उठाकर कहा, घर की इज्जत? तो ये लड़की तुम्हारे घर की इज्जत है, जिसकी तुम इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। आयरनी देख रहे हो प्रथम? वेद के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसके शब्द सुनकर अंकुश के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ कह पाता उससे पहले वेद ने आगे सख्त आवाज में कहा, ये बड़ी बड़ी बातें तुम उन लोगों के सामने करना जो तुम्हें ठीक से नहीं जानते हैं। अंकुश राजावत, तुम जानते भी नहीं हो ये लड़की कौन है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हें इसका सच पता चला तो तुम खुद अपने हाथों से इसकी जान लोगे, अंकुश भड़कते हुए बोला। वो खुद को सही साबित करने में इतना पागल हो गया था कि वेद के सामने शिवांशा का सच तक बताने को तैयार हो गया था। शिवांशा वहां डरी हुई हालत में खड़ी थी। वो नहीं जानती थी कि वेद कौन है और अचानक वहां क्यों आया है। बस उसे इतना पता था कि वो जो भी था उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था, जिसने आज उसे अंकुश जैसे शैतान से बचाया था। वहीं अंकुश की बातों का मतलब शिवांशा को समझ नहीं आया। वो बस चुपचाप खड़ी थी। अंकुश अपने मुंह से शिवांशा का राज बताने वाला था कि तभी वेद ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं अच्छे से जानता हूं कि ये कौन है, और मैं यहां इसे बचाने के लिए नहीं आया हूं। मारूंगा तो मैं भी इसे, लेकिन हां, तुम्हारी तरह इज्जत का नाम लेकर किसी के साथ रेप करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ये देवराज ठाकुर की पोती है, तुम्हारी दुश्मन, भूल गए तुम? इसके दादा ने तुम्हारे माँ बाप को बेरहमी से मारा था और तुम्हारी जान भी लगभग लेने ही वाले थे। अंकुश अपनी बातों से वेद को उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका ध्यान उससे हटकर शिवांशा की तरफ चल जाए। अंकुश के मुंह से वो सब सुनने के बाद शिवांशा को पता चला कि वेद कौन था। इसी के साथ उसे ये भी समझ में आ गया था कि एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरी मुसीबत में फंस चुकी थी। अंकुश की बातें सुनकर वेद का पारा हाई होने लगा था। उसने मुट्ठी कसते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें प्रथम तुम्हारे घर पर फेंक कर आए तो अपने आप अपने घर चले जाओ। अंकुश की भी मजबूरी थी कि वो बिना शिवांशा के वहां से नहीं जा सकता था। तेजेंद्र ने उसे शिवांशा को मारने के लिए कहा था। ऊपर से उसकी एक बेवकूफी की वजह से शिवांशा आज जिंदा थी, और वेद को भी इस बारे में पता चल चुका था कि उनकी फैमिली ने ही शिवांशा को पनाह दे रखी थी। इन सब के अलावा अरमान भी उसे ढूंढ रहा था। अंकुश ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, ठीक है, मैं यहां बिना किसी तमाशे के चला जाऊंगा, लेकिन मुझे शिवांशा अपने साथ चाहिए। तुम उसे मार नहीं सकते हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे असिस्टेंट का काम करना शुरू कर दिया है जो ये बताता है मुझे कब क्या करना है। मैंने कहा ना, सस्ते में जाने दे रहा हूं तो निकाल लो, वरना महंगा पड़ेगा। वेद ने अपने कदम अंकुश की ओर बढ़ाते हुए कहा। वेद की निगाहें इस वक्त बेहद सर्द थीं। उसने प्रतीक को इशारा किया तो प्रतीक ने अपने वेस्ट बैंड से गन निकाल सीधे अंकुश की तरफ पॉइंट कर दी थी। शिवांशा पहले से घबराई हुई थी। ऊपर से गन देखकर वो और डर गई। प्रतीत अंकुश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके करीब बढ़ रहा था। अंकुश ने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अंकुश अपनी गाड़ी में आकर बैठा और उसने इस वक्त अरमान को कॉल किया। अरमान, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम हमारी फैमिली के बारे में तो जानते ही हो। वेद सिंह चौहान को पता चल गया है कि शिवांशा कौन है और वो उसे लेकर चला गया है। अंकुश ने एक सांस में उसे सब कुछ बता दिया था। वो जानता था कि इस वक्त अरमान ही था जो बिना सवाल किए उसकी मदद कर सकता था, क्योंकि उसे शिवांशा की जान बचानी थी। बेवकूफ समझते हो तुम मुझे। तुमने उसे मुसीबत में डाल दिया, और अब जब घर वाले तुमसे सवाल करेंगे तो मदद के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। अगर तुम्हारी वजह से शिवांशा को कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर अंकुश, तुम्हारे कारनामे मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं और वो मैं पूरी फैमिली को सुना दूंगा। अरमान ने गुस्से में कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इससे पहले कि वो वेद उसकी जान ले, हमें शिवांशा को बचाना होगा। अंकुश ने फीकी आवाज में कहा। अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल काट दिया। इस वक्त अरमान की गाड़ी सीधे वेद सिंह चौहान के घर की तरफ बढ़ रही थी।
रात के लगभग 10 बजने को आए थे जब शिवांशा, वेद और प्रथम जंगल में खड़े हुए थे। वेद ने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा। वो उम्र में काफी छोटी नजर आ रही थी। शादी के जोड़े में सजी हुई डरी सहमी सी वहां खड़ी थी। अपना हुलिया सही करो, वेद ने उसे देखकर तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज से शिवांशा डर से हड़बड़ा गई थी। वो उचकते हुए बोली, क्या सुनाई नहीं देता? अपने कपड़े सही करो, वेद ने फिर कहा। शिवांशा ने उसके कहने पर खुद की तरफ ध्यान दिया। उसका एक दुपट्टा तो जंगल में ही गिर गया था, जबकि दूसरा दुपट्टा बुरी तरह उलझा हुआ था। उसके ब्लाउज की स्लीव एक कंधे से उतरकर नीचे झूल रही थी और ज्वेलरी भी इधर उधर हो रही थी। शिवांशा ने जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया था। लगभग 5 मिनट में वो अपने कपड़ों की मिट्टी झाड़कर सही कर चुकी थी। गाड़ी के अंदर बैठो, वेद ने आगे कहा। शिवांशा चुपचाप उसकी सारी बात मान रही थी। उसकी तो इतनी हिम्मत तक नहीं पड़ रही थी कि वो वेद की तरफ ठीक से देख भी सके। शिवांशा गाड़ी की बैक सीट पर जाकर बैठ गई थी। प्रथम गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि वेद शिवांशा के साथ पीछे की सीट पर आ गया था। उसने गाड़ी का पार्टीशन लगाया और शिवांशा की तरफ एक नज़र देखा। कितने साल की हो तुम? वेद ने बिना किसी भाव के पूछा। आज मेरा बर्थडे है, मैं 21 साल की हुई हूँ, शिवांशा ने हिचकिचा के हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। वेद का भी बर्थडे आज ही के दिन था। ये दिन उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। वेद के हिसाब से जब उसे पैदा करने वाले माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे तो वो उसे क्यों सेलिब्रेट करे। बस आज के दिन वो शिवांशा की जान नहीं लेना चाहता था। वेद ने गहरी सांस ली और आगे पूछा, और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? वेद उससे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था और जानबूझकर उसकी फैमिली के बारे में सब जानना चाहता था। वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। पिछली बार भी शिवांशा बच गई थी। वो नहीं चाहता था कि अब ठाकुर फैमिली का कोई और सदस्य इस दुनिया में रहे। फैमिली के बारे में पूछने पर अचानक शिवांशा के चेहरे पर डर के भाव उभर आए थे। उसने वेद की तरफ देखा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे यहां नहीं होना चाहिए, प्लीज आप मुझे वापस छोड़ दीजिए, मुझे राजावत फैमिली में जाना ही होगा। पागल हो गई हो तुम, वो आदमी तुम्हारे साथ रेप करना चाहता था, उसकी फैमिली ने तुम्हें मारने का काम दिया था और तुम वहीं पर जाना चाहती हो? वेद ने हल्का हैरानी जताते हुए पूछा। वो जानना चाहता था कि शिवांशा की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ऐसे हालातों में भी वो अभी भी राजावत फैमिली के पास जाना चाहती थी। जान दे दूंगी तो चलेगा, लेकिन मुझे वहीं पर ही जाना होगा। आप समझते क्यों नहीं हैं? प्लीज मुझे वहां छोड़ दीजिए, शिवांशा ने सिसकते हुए कहा। बोलते हुए उसने वेद के बाजू पर हल्का सा हाथ लगाया, जिस पर वो सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। शिवांशा ने तुरंत डर कर अपना हाथ साइड कर लिया था। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ जा रही हो। मरने का इतना ही शौक है तो अच्छी बात है। वैसे भी मुझे तुम्हारी पूजा नहीं करनी है, तुम्हारी जान ही लेनी है। बस मेरी मजबूरी ये है कि आज के दिन मैं तुम्हें नहीं मार सकता। 12 बजने में सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा है, 1 घंटे की जिंदगी एंजॉय करो, वेद ने काफी बेरहमी से कहा। वो शिवांशा से कुछ छुपाने वाला नहीं था। वेद ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो भी उसकी जान लेगा। आपके लिए 1 घंटे मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत रखते हैं। आप मुझे मारना चाहते हैं ना? बेशक मार दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मुझे राजावत फैमिली में जाना है, मुझे वहां लेकर चलिए। मरना तो मुझे वैसे ही है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कोई भी मारे, शिवांशा ने खुद को मजबूत करके कहा। उसने पहली बार किसी के सामने अपने दिल की ख्वाहिश रखी थी। ना जाने क्यों वो सच वेद को ही बता रही थी, जबकि वो जानती थी कि वेद और उसकी फैमिली के बीच क्या हुआ था। अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो यही सही। ये मत समझना कि राजावत फैमिली तुम्हें मुझसे बचा पाएगी, क्योंकि इतनी उनकी औकात नहीं है। वो फिलहाल खुद को मुझसे बचा लें, वही उनके लिए काफी होगा, वेद ने ठंडे स्वर में कहा। शिवांशा की बात मानकर वेद ने प्रथम को मैसेज करके राजावत हाउस चलने के लिए कहा। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अंकुश इस बात को अच्छे से जानता था कि शिवांशा मरने से पहले एक बार वहां पर जरूर आएगी, क्योंकि उसके लिए सबसे कीमती चीज वहीं पर थी। ये अंकुश के पास अच्छा मौका था जब वो वेद से शिवांशा को हासिल कर सकता था। इसके साथ वो उससे अपना बदला भी पूरा कर सकता था। राजावत हाउस से कुछ दूर पहले ही वो उनके लिए तैयार खड़ा था, अपना बदला लेने के लिए।